તારીખ 3/9/1988 પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 423 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 337
નિર્વિકલ સંયમ દર્શન હોને પર આત્મા કે સર્વ ગુણો કા આંશિક શુદ્ધ પરિણમન હોવે ઇતના હી નહીં લેકિન વેદન મેં આતા હૈ અનુભવ મેં આતા હૈ वेदन में आता है इसका मतलब अनुभव में आता है क्या ऐसा प्रश्न है उसका उत्तर देते हैं कि निर्विकल्प स्वानुभूति की दशा में आनंद गुण की आश्चर्यकारी पर्याय प्रकट होने पर आत्मा के सर्व गुणों का यथासंभव आंशिक शुद्ध परिणमन प्रकट होता है और सर्व गुणों की पर्यायों का वेदन भी होता है प्रकट भी होता है और वेदन भी होता है ऐसा स्पष्ट उत्तर दिया है कि ऐसा होता ही है। आनंद का मुख्य परिणमन है या विशिष्ट परिणमन है आनंद सहित निर्विकल्प स्वानुभूति की दशा में या शुद्ध उपयोग की बात लिया है। आगे समय सार के प्रथम मांगलिक कलश में स्वानुभूत्या चकासते ये जो बात कही अमृतचंद्र आचार्य देव ने स्वानुभूत्या चकासते स्वानुभूति से प्रकाशित होता है आत्मा अपने स्वानुभूति में प्रकाशित होता है स्वानुभूति द्वारा प्रकाशमान होता है। ये निर्विकल्प स्वानुभव है इस अनुभव में किसी भी प्रकार का स्थूल विकल्प तो होता ही नहीं किंतु सूक्ष्म बिल्कुल सूक्ष्म विकल्प हो मन का ऐसा भी कभी होता नहीं। दूसरे पदार्थ की चिंता या दूसरे पदार्थ संबंधित विकल्प तो होता ही नहीं किंतु स्वयं के स्वरूप के विषय में भी विकल्प नहीं होता। विकल्प नाम जिसको देवे ऐसा कोई भी भाव जिसको नाम विकल्प दिया जाए ऐसा कोई भी भाव निर्विकल्प परिणाम के काल में नहीं होता उसको निर्विकल्प कहते हैं। निर्विकल्प स्वानुभूति की दशा में आनंद की प्रधानता है आनंद की मुख्यता है। दूसरे गुण की अवस्था पर लक्ष्य नहीं होने से कैसी है या कैसी नहीं है अस्ति नास्ति से उसका वहां विचार नहीं चलता विकल्प नहीं चलता बराबर। फिर भी आनंद की कोई विशिष्टता ऐसी है कि अनंत काल में नहीं उत्पन्न हुआ हो ऐसा कोई प्रचुर आनंद और साधारण आनंद विशेष आनंद अनुभव होता है। इस जीव को अनादिकाल से स्वरूप का आनंद अनुभव में वेदन में आया नहीं क्या हुआ है को अनंत काल बीता है अनादि से लेकर वर्तमान तक का जो अनंत काल है उस अनंत काल में एक क्षण भी आत्मा का निर्विकल्प निजानंद जिसको कहते हैं आत्मानंद जिसको कहते हैं जिसको ज्ञानानंद कहते हैं ऐसा आनंद कभी अनुभव में आया ही ऐसा आनंद प्रकट होने से क्योंकि वो भी अनंत गुण में से एक गुण है ये आनंद भी प्रकट होता है। दूसरे दूसरे गुण समझ में आवेंगे नहीं आवेंगे लेकिन आनंद हुआ है वो बात तो असाधारण होने से उसके किसी भी जीव को निरियंच होवे तो भी मुझे आनंद हुआ ये उसको समझ में बराबर आता ही है। इसलिए दूसरे गुण की वर्णन नहीं किया ज्ञान का भी विशिष्ट बात है सो समझ संवेदन रूप, लेकिन वो भी बात नहीं लिया, बात लिया सिर्फ आनंद की। इस दशा में आनंद गुण की आश्चर्यकारी पर्याय प्रकट हुआ। कैसा आनंद है? जिस आनंद को अनुभव करते हुए अनुभवी को भी आश्चर्य होता है, क्योंकि कभी उसको आगे अनुभव में आया नहीं था, और बार बार इस आनंद को अनुभव, आनंद के अनुभव में रहने रहे, सदा ही रहे, बार बार होवे और सदा ही रहे, इन भावना में अनुभवी जीव, मोक्ष मार्गी जीव इन भावना में हमेशा रहता है। आनंदमय आत्मा है, अनंत आनंद का पिंड आत्मा है, आनंदमय। और अनुभव से बाहर निकलते ही विकल्प भी ऐसा हो रहा है कि मेरी आने वाली अनंत कालावली, काल का समूह, कालावली मैंने आने वाला सभी कार्य का काल का समूह, ऐसे आनंदमय आत्म तत्व के भोगने में ही बह रहे, यही मेरी भावना है। ऐसे भावना को नियम सार में उबाल टीकाकार आचार्य महाराज ने सूत्रकर्ता आचार्य देव का अभिप्राय से ये बात निकाली है। अनंत कालावली मेरे आत्म तत्व के भोगवता में ही वह, मेरा काल कहीं और दुख में नहीं जाओ, दुख को मैं नहीं चाहता और दुख मुझे स्वप्न में भी नहीं चाहिए। मेरे आत्मा के निराकुल आनंद में ही बस मैं रहूं, यही भावना है। इसलिए कहा गया आनंद गुण की आश्चर्यकारी पर्याय, आनंद गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये आकर्षण करने वाली शक्ति है, स्वयं को अपने आप में आकर्षण क्यों होवे, कैसे होवे, कैसे होवे, कि आनंद होने से अपना आकर्षण है। ऐसा कोई वचनातीत आनंद है, ऐसा कोई अद्भुत और आश्चर्यकारी आनंद है कि जिस आनंद के आगे तीन लोक के किसी भी पदार्थ तुच्छ नजर आता है। सारे तीन लोक का साम्राज्य किसी को होता ही नहीं, ऐसा पुण्य किसी को होता ही नहीं। देवलोक के इंद्र हैं, मनुष्य के इंद्र हैं, चक्रवर्ती आदि, एक दूसरे में एक दूसरे का अधिकार नहीं है, फिर भी तीन लोक का साम्राज्य अगर मिले तो भी ये आनंद की एक क्षण की पर्याय के आगे तुच्छ भाषित होता है। इंद्र को इंद्रासन पर बैठने का विकल्प दुखमय लगता है, आनंद के आसन पर विराजमान होने में आनंद आता है, और वीरारत्न जड़ित सिंहासन पर बैठने में उसको विकल्प होता है, उसमें दुख होता है, आपूर्ता दोनों में इतना अंतर है, एक में दुख और एक में सुख। इनके जो नीचे इन पुण्य के धारक जो देव हैं, जो उनके अनुचर हैं, सेवक हैं, वो तो ऐसे देखते हैं, कहा इंद्र कितना सुखी है, क्या वैभव है इनके पास, और क्या सारे असंख्य देव इनकी तैनात में खड़े रह जाते हैं। दूसरा उनको सुखी देखता है, लेकिन वो भीतर में क्या समझता है, समीप दृष्टि होने से ये जो जितना भी संयोग है पुण्य का, इस पर मेरा लक्ष्य जाता है, उपयोग जाता है, यही दुख है। वहाँ दुख नियम से आकुलता यहाँ उत्पन्न होती ही है। आनंद गुण के आश्चर्यकारी पर्याय प्रकट होने पर मुख्यता थी इस बात में, साथ ही साथ होने पर मैंने साथ ही साथ आत्मा के सर्व गुणों, पूरे अनंत अनंत सर्व गुणों आंशिक शुद्ध परिणाम यथा संभव मैंने किसी को कोई गुण कुछ विशेष विकसित होता है और कोई गुण कोई विशेष विकसित होता है, ऐसा सबको एक सरिका नियम नहीं है। यांशिक शुद्ध परिणाम और गुणस्थान अनुसार चौथे गुणस्थान में छठे गुणस्थान जितनी चारित्र की स्थिरता कभी नहीं हुए और आनंद भी चतुर्थ गुणस्थान की मर्यादा में ही हुए, निर्मलता भी चतुर्थ गुणों की चतुर्थ गुणस्थान की मर्यादा में हुए, ऊपर के गुणस्थान की शुद्धि वहाँ प्रकट नहीं होती। आंशिक शुद्ध परिणाम प्रकट होता है और सर्व गुणों के पर्यायों का अनुभव भी होता है, होता है मैंने अनुभव भी होता है। यहाँ ऐसा प्रश्न उठता है कि अनंत गुण के पर्यायों का अनुभव होता है वो कैसे पता चलता है? जैसे एक औषधि की गोली हो उसमें सहस्त्र औषधि मिलाई हो करके गोली बनाते हैं, रार औषधि को मिला करके खरल में उसको घूंट करके फिर इसको गोली बनाने में, तो एक गोली में हजार औषधि का अंश आता है कि नहीं आता है? तो वो हजारों का स्वाद आवे कि नहीं आवे? तो भले एक एक औषधि को अलग अलग स्वाद से नहीं समझे फिर भी एक हजार औषधि का स्वाद इसमें है ये बात जरूर है, को इतना घूट करके मिल गई है कि कोई औषधि इसमें अलग नहीं रह सकती, रखना चाहे तो भी नहीं रह सकती। ऐसे एक मिठाई हो इसमें बहुत मसाले ना थे हो, तेजाना मसाला सब डालते हैं, केसर इलायची वो सब डालते हैं, तो जितने भी डाले हो उतने का स्वाद आता है कि नहीं आता है? इसका लड्डू बना ले या कुछ भी बना ले एक कवर दे रहे इसमें से उसमें सब आता है या नहीं आता है? एक साथ सबों का स्वाद आता है, भले ही अलग अलग छांट नहीं छांटे नहीं छांट सके भी नहीं लेकिन आता है वो बात अवश्य है, नहीं आवे ऐसा नहीं बनता। इसका कारण भी यहाँ इसका लॉजिक भी दिया है कि कैसे ऐसा क्यों होता है कि वहाँ तो अलग अलग परमाणु हैं, अलग अलग चीज हैं, फिर भी मिलावट करने से उसका स्वाद आता है, यहाँ तो इतना भी अंतर नहीं है, एक परमाणु और दूसरे परमाणु में अंतर हुए उतना अंतर एक गुण और दूसरे गुण में नहीं होता। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण एक साथ है, एक प्रदेश में अनंत गुण एक साथ है, आत्मा अखंड है, एक साथ रहने को यहाँ अखंडपना कहने में आता है, अखंड है आत्मा, अखंड कहो अभेद कहो एक कहो एक ही बात है, आत्मा एक है अभेद है अखंड है ऐसा कहने में आता है। और पदार्थ की अखंडता की वजह से अखंडता के कारण ही सर्वगुण आत्मा के ही है, अखंड आत्मा के एक अखंड आत्मा के ही सर्वगुण है, इनकी विशेषताएं हैं अनंत, इसलिए एक गुण की पर्याय का वेदन हो उसके साथ साथ सर्वगुणों की पर्यायें अवश्य वेदन में आती है। वैसे तो सर्वगुण का परिणमन सदा ही चालू रहता ही है, सम्यक होने से ही कुछ गुण जो परिणमन नहीं करते थे वो परिणमन करने लग गए, पहले उसके परिणमन बंद था अभी चालू हुआ, वैसे जैसे कोई नल का कॉप बंद कर दिया फिर उसको चालू कर दिया, ऐसी बात नहीं है। अशुद्ध परिणमन था, कितने गुणों का शुद्ध परिणमन था कितने गुणों का अशुद्ध परिणमन था, लेकिन सर्वगुण परिणमन रूप तो थे और अशुद्ध परिणमन अशुद्ध अशुद्धता रूप वेदन में आता था और शुद्ध परिणमन हो गए तो शुद्ध रूप वेदन में आ गए, सीधी बात है। आत्मा अखंड है, सर्वगुण आत्मा के ही है, सर्वगुण है जो आत्मा की है, कोई दूसरे पदार्थ से तो कोई गुण उसमें नहीं है। इसलिए एक गुण की पर्याय का वेदन हो, उसके साथ साथ सर्व गुणों की पर्याय अवश्य वेदन में आती है। आवे ही आवे, नहीं आवे ऐसा नहीं बनता। इसका कारण यही है कि आत्मा अखंड पदार्थ है, उसमें खंड पड़ते नहीं है। भले ही सर्व गुणों के नाम न आते हो, अलग अलग छाट न सके, उसके नाम न आवे, इसको इस गुण का नाम कैसा हो, इस गुण का नाम कैसा है, अनंत शब्द भी नहीं भाषा में, तो अनंत शब्द नहीं, संख्यात शब्द है भाषा में तो, और गुण कितने हैं कि गुण तो अनंत है। भले ही सर्व गुणों के नाम न आते हो और सर्वगुणों की संज्ञा भाषा में होती भी नहीं, संज्ञा में नाम, नाम आते नहीं और नाम होते भी नहीं, दोनों बात है, नाम होते भी नहीं और नाम आते भी नहीं। सर्वगुणों की संज्ञा भाषा में होती भी नहीं, तथापि उनका संवेदन तो होता ही है, उनका वेदन तो आता ही है। संवेदन मैंने सम्यक प्रकार से वेदन, अंतर्मुख होकर, स्वसन्मुख होकर वेदन करना, उसको संवेदन कहने में आता है। अच्छी प्रकार से, भले प्रकार से, सम्यक प्रकार से, स्वाभिमुख होकर जो वेदन होता है उसको संवेदन कहने में आता है। सर्वगुणों की संज्ञा भाषा में होता तो होती भी नहीं, तथापि उनका संवेदन तो होता ही है। आत्मा के अंत गुण के तो नाम भी नहीं है, दिव्य बंधनी में भी इसका नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया कि है ही नहीं नाम, अनिर्वचनीय गुण है, अनंत गुण ऐसे है, अनिर्वचनीय है, बहुत कम मात्रा में नाम प्रसिद्ध है। गुरु ने तो काफी शास्त्र पढ़े, अध्यात्मशास्त्र तो खास खास थे, वो सब पढ़े थे, उसमें से जहाँ भी आत्मा के गुणवाचक नाम आवे, गुण के नाम आवे, वो ध्यान में लिख लेते थे। ये सुरताली शक्तियाँ तो प्रसिद्ध हैं, इसके अलावा अनुभव प्रकाश में भी कुछ के अतिरिक्त दिए हैं, शिवविलास में भी दिए हैं, और भी जगह हैं संग्रह वगैरह में। एक सौ के आसपास की संख्या में नाम प्रसिद्ध, अभी जो है उपलब्ध शास्त्रों में वो एक सौ के, तो कहाँ अनंत गुण, कहाँ एक सौ, कुछ नहीं है उसमें, एक सौ तो उसमें उसमें कुछ नहीं है। इसलिए बहुत कम मात्रा में अभी नाम प्रसिद्ध है, लेकिन कितने भी नाम प्रसिद्ध हो, अनंत के तो नाम है भी नहीं। स्वानुभूति के काल में अनंत गुण सागर आत्मा अपने आनंद आदि गुणों की चमत्कारी स्वाभाविक पर्याय में रमण करता हुआ प्रकट होता है। स्वानुभूति के काल में, मैंने शुद्धोपयोग के काल में, स्वानुभव के काल में, भूति शुद्ध परिणति में भी लगती है और उपयोग में भी लगता है। स्वानुभूति उपयोग को भी कहते हैं, परिणति को भी कहते हैं, जहाँ जो कहने का अभिप्राय हो वहाँ ऐसा अर्थ गठन समझना चाहिए। स्वानुभव के मैंने शुद्धोपयोग के काल में शुद्धोपयोग लेना है। अनंत गुण सागर आत्मा, अनंत गुण का सागर, जैसे सागर में बहुत पानी है, वैसे ही आत्मा में गुण कितने हैं,
अनंत
अनंत गुण है। एक आत्मा में गुण कितने, गुण अनंत। इसलिए आत्मा पदार्थ एक होने पर भी वो गुणों का सागर है, इतने गुण है कि जैसे गुणों का कोई सागर है। ये आत्मा सागर को भी मर्यादा होती है, वहाँ अनंत कहने से कोई मर्यादा नहीं है। इतनी गिनती करने को जावे तो गणित को अपनी मर्यादा छोड़ देनी पड़ती है। गणित एरिथमेटिक मैरिट मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं उसको अपनी मर्यादा छोड़ देनी पड़ेगी। इतने संख्या में अनंत गुण है, यही आत्मा की संपत्ति है, यही आत्मा की प्रॉपर्टी है। आत्मा कोई दरिद्र कोई दीनहीन पदार्थ है ऐसा कभी लेना नहीं है, ऐसा कभी अनुभव भी नहीं करना है, ऐसा कभी विचार भी नहीं करना है कि क्या है, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, साधारण आदमी हूँ, मेरी क्या गुंजाइश है, मेरी क्या शक्ति है, क्या ताकत है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो निर्बल हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा विचार नहीं करना। अवस्था में इस प्रकार होने पर भी मूल स्वरूप ऐसा नहीं है। सत्शास्त्र में कोई विशिष्ट बात है तो यह है कि ठाम ठाम पर स्थान स्थान पर आत्मा की सामर्थ्य को दर्शाई है, आत्मा की सामर्थ्य को दिखलाई है, प्रसिद्ध की है कि देख तेरे में क्या चीज पड़ी है। तो कोई दिनहीन पदार्थ नहीं है, नहीं है, बहुत शक्ति है। तेरी शक्ति इतनी है कि जिसके प्रथम स्फुरण में ही
प्रथम स्फुरण में ही
सभी प्रकार की दुर्गुण की निर्बलता है। निर्बलता किसकी है? जीव को दुर्गुण की निर्बलता है, वो जाने लगती है, भगने लगती है। महाभारत का युद्ध का दृष्टांत आता है, ऐसा आता है जब अर्जुन ने गांडीव धनुष हाथ में लेकर इसकी डोरी पणस कहते हैं,
पणस
धनुष की डोरी को पणस कहते हैं, वो टाइट बांधने में आते हैं, मां को छोड़ना है वेग से कि जोर से बहुत टाइट होती है, उसको थोड़ा खींचा, टाइट डोरी खींचने से उसमें थोड़ा हवा के साथ स्पंदन होने से आवाज़ आती है, तो आवाज़ इतनी बड़ी आई और इस प्रकार की आई कि जो कौरव के सैन्य में जो भीरु थे अपने मौत से डरते थे, मृत्यु से डरते थे, ऐसे हजारों लोग तो भगने लग गए, भग गए, मर जाएंगे। जिसकी दूरी की ऐसी आवाज है, जिसका तीर छूटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, भगने लग गए। उसका ऐसा वो विद्या का साधित था, तो ऐसे ही आता है पुराण में ये सब बात आती है। तो यहाँ कहते हैं कि तू भी इतना शक्तिवान है और तेरी अध्यात्म विद्या में उतनी ताकत है कि अपनी शक्ति को संभाल करने के पुरुषार्थ की प्रथम कोशिश, प्रथम प्रयास जो होता है, उस प्रयास के काल में ये दुर्गुण की निर्बलता है सब भगने लग जाती है। कहाँ चली जाती है पता लगता
नहीं,
नहीं है। जैसे भीगा हुआ कपड़ा, कपड़ा धोते हैं उसको, तो फिर धूप में सोखते हैं, डोरी पर लगा देते हैं, वो तो पानी कब कहाँ चला जाता है उसको पता चलता है
नहीं चलता।
क्या कहते हैं उसको? बाष्पीभवन कहते हैं, विज्ञान की भाषा में उसको बाष्पीभवन कहते हैं, वेपोराइज करते हैं, हवा बन जाती है पानी में से, ये हवा बन जाती है, हवा तो दिखती नहीं है आँख से, नजर में नहीं आती, तो कहाँ चला जाता है पानी पता नहीं लगता है। वैसे मैं अनंत शक्ति में चैतन्य स्वभावी परमात्म तत्व परमेश्वर तत्व में ही हूँ, ऐसा आते ही पुरुषार्थ से जोर से ऐसा भाव आते ही न जाने ये राग द्वेष मोह आदि जो विकृतियां हैं, विभाव है, विकार है, अनेक प्रकार के दुर्गुण हैं जो अशक्ति की जड़ है, न जाने कहाँ चली जाती है, पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ चली जाती है, ऐसा हो जाता है।
वाह,
ऐसा कहते हैं,
महान है,
ऐसा महान है कि जिसकी टंकार से, धनुष की टंकार जिसको कहते हैं, आवाज को टंकार कहते हैं, संकार मात्र से जैसे भग जाते हैं भीरु लोग, वैसे ही ये दोषित परिणाम को बहुत भीरु है, अशक्त है, वो तो चैतन्य के प्रथम स्फुरण में ही भग जाते हैं। उसकी सबों की पीठ दिखती है, किसी का मुंह तो दिखता ही नहीं, क्योंकि वो भगने की तैयारी करने लगे कि मर गए अभी तो। ये जो चैतन्य सम्राट है, महाशूरवीर योद्धा है, मारता नहीं है अपने को, तो अपना तो कोई हिसाब ही नहीं इनके पास, कुछ कुचल देंगे अपने को तो खत्म कर देंगे, क्षण मात्र में खत्म करेंगे, इतना महान है। ऐसी इनकी ताकत दिखाने का सत्शास्त्रों में बार बार सत्पुरुषों ने प्रयास किया है। यहां भी कहते हैं कि अनंत गुण सागर आत्मा, अनंत शक्ति सागर, अनंत गुण सागर को एक एक गुण की सामर्थ्य अनंत, ऐसे अनंत गुण संख्या है, एक दो हजार लाख करोड़ अरब नहीं, असंख्यात नहीं लेकिन अनंत, एक आत्मा में ऐसे अनंत गुण, अनंत शक्ति, एक एक शक्ति की सामर्थ्य
अनंत,
बेहद सामर्थ्य, उसको यहाँ अनंत गुण का सागर कहने में आत्मा में
अनंत गुण
है। अरे एक प्रदेशी परमाणु में भी अनंत गुण है, असंख्य प्रदेशी आत्मा में अनंत गुण नहीं, एक प्रदेशी परमाणु में भी अनंत गुण है और अनंत शक्ति है। और आज के विज्ञान में तो ये बात बहुत प्रसिद्ध है, एटॉमिक एनर्जी जिसको कहते हैं अपन, वो एटम तो एक परमाणु नहीं है, वो तो अनंत परमाणु का एक स्कंद है, जिसको अब जो विज्ञान वाले, वर्तमान विज्ञान वाले जिसको परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं, उसमें तो बहुत से परमाणु हैं, एक परमाणु नहीं। जैन दर्शन में जिसको एक परमाणु कहा, एक परमाणु तो बहुत सूक्ष्म है, वो किसी भी साधन से देखने में इंद्रिय ज्ञान में ग्रहण होता नहीं है, तो उसमें शक्ति बहुत है। इतिहास आता है कभी कभी पेपरों में, तो ये बात आती है कि मरे वो तो मरे बहुत से लोग, लेकिन जो मरे ने कुछ घायल हुए और किसी को इस बम की हवा का प्रदूषण श्वासोश्वास में या शरीर में कहीं भी लग गया, इनको इतनी बीमारियां हुई, कितना पॉइजनस था, ये कहने का मतलब है के हॉस्पिटलों में कहीं जगह मिले नहीं, इतने लोग परेशान, इतने लोग इसमें चक्कर में आ गए, मर गए वो तो मर गए साहब, लेकिन जो जिंदे रहे हैं इनकी यही हालत थी कि रोग के ग्रसित हो गए, इसकी हवा से, इसके घाव से, घायल होने से, कि कहीं तो वैसे ही बीमारी की वजह से मर गए थे, तो कहीं बचे तो सारे जीवन वैसे ही रोगग्रस्त रह गए, अनक्योरेबल डिजीज हो गए कई लोगों था, तो इतना ही बम कितनी असर हो सकती, एक परमाणु में अनंत शक्ति है, वो कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इधर एक परमाणु में है, इधर तो इधर एक आत्मा में अनंत शक्ति है और उसमें सब शक्ति है, वो अमृत आनंदमय है। बम में भले जहर होगा लेकिन यहाँ तो
अमृत
अमृत है, अमृत से अनंत आनंद, अमृत से भरा हुआ अनंत अमृत का पिंड है आत्मा, उल्टा है इधर, ऐसी बात है।
अभी तक कहाँ गया था वो,
कभी कहीं गया ही नहीं, अभी तक नहीं, कभी तक, कभी भी कहीं गया ही नहीं, जहाँ है वहाँ है, लेकिन उनको समझे नहीं, संभाले नहीं, उसको विकास करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आए
नहीं,
यही कारण
अनंत काल से आए।
जैसे सोने की और हीरे की खानी में सोना और हीरा पड़ा हुआ अनंत काल तक नहीं निकाले कोई, तो कहाँ गया था? था वहां का वहां था, मिट्टी के साथ, मिट्टी के परमाणु के साथ, पत्थर के परमाणु के साथ सोने के परमाणु भी थे। तो गोल्ड स्टोन कहते हैं सोने के पत्थर, सोने के पत्थर नहीं, पत्थर और सोना साथ में है, उसको गर्मी देते हैं। माटी के पत्थर के जो परमाणु हैं वो जल जाते हैं, उसके राख बन करके वो छूट जाते हैं, और जो सोने के परमाणु हैं वो सोने के रूप में रह जाते हैं, तो उसकी जो है वो लकड़ी बनाई जाती है, उसका एक परमाणु एक साथ मिलते हैं, ताकि सोना को संशोधित किया। लेकिन था उसको संशोधित किया, नहीं था कोई सोने को बना लिया है ऐसा नहीं। ऐसे ही आत्मा दोष से संसार अवस्था में परिभ्रमण करता है, अपने दोष भाव से, दूषित भाव से दुखी होता रहा है और जन्म मरण करता है, अनेक प्रकार के विभाव भाव में वो रहा है अनंत काल से। जब उनको पता चलता है अपनी गुण संपत्ति का, तब फिर इसका जो परिणाम है उसमें पहले श्रद्धा होती है कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा विश्वास आता है, श्रद्धा होती है, प्रतीत होती है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और ऐसा ही अनुभव होता है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, और ऐसे ही आत्मरमणता और स्थिर परिणाम होते हैं उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। उसी काल में शुद्ध अमृतमय आनंद का आस्वादन होता है, उसको आनंद गुण का प्रकट हुआ होना ऐसा कहने में आता है। ये मुख्य मुख्य गुण है, ऐसे ऐसे आनंद हैं। ऐसे स्वानुभूति के काल में आनंद गुण सागर आत्मा अपने आनंद आदि गुणों की चमत्कारिक स्वाभाविक पर्यायों में रमण करता हुआ प्रकट होता है। ये शैली दिया सुंदराचार्य देव जी, दंशन नान चरित्र ठियो दूसरी गाथा में, दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित ऐसे आनंद आदि पर्यायों में प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ?
आत्मा
प्रकट हुआ ऐसा कहा। वास्तव में तो ऐसी पर्याय प्रकट हुई है, पर्याय आत्मा में स्थिर हुई है। दूसरी गाथा में ये कहा कि आत्मा स्थिर दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थिर हो गया, ये कहने की पद्धति में बराबर समझ में आता है। इसलिए समझ में आता है कि उसी पद्धति से जीव परिणमन कर रहा है कि मैं रागी हुआ हूँ, मैं द्वेषी हुआ हूँ, मैं क्रोधी हुआ हूँ। क्या उसको अनुभव आता है?
क्रोधी हुआ हूँ,
क्रोध तो एक अवस्था हुई है, लेकिन मैं क्रोधी हुआ हूँ ऐसा उनको अनुभव है। तो जिस ढंग से वो अनुभव कर रहा है उस पद्धति से उनको समझाते हैं, इसलिए उनको समझने में आसान पड़े।
आदि
पद्धति समझाने के। और यहाँ पर निर्विकल्प स्वानुभव का स्वानुभव रस वाला जो परिणमन है उस रस को भी दर्शाते हैं। स्वानुभव की निर्विकल्प जो अवस्था है उसमें जो आत्मरस है उस आत्मरस की भी बात उसमें चली है कि स्वानुभूति के काल में अनंत गुण सागर आत्मा, अनंत गुण का सागर उछला, अनंत गुण का सागर है, उछाला खाया, भीतर में से भर्ती आई, उसमें आनंद आदि गुणों की भर्ती आई। ऐसा अनंत गुण सागर आत्मा अपने आनंद आदि गुणों की चमत्कारी स्वाभाविक पर्यायों में रमण करता हुआ कैसा वर्णन दिया है? अपने अनंत गुणों की चमत्कारिक आश्चर्यकारी चमत्कारी पर्यायों में रमणता करता हुआ, उछलता हुआ, आत्मा प्रकट होता है, स्वानुभव के काल में यही हालत होती है, ऐसा कहते हैं।
माता जी को प्रश्न किया था, रमता प्रकट होता है वो क्या बात की, रमता प्रकट हुआ है
बहुत देते हैं उसमें भी, देते हैं ये अभिनंदन ग्रंथ में भी आए हैं बात है, चाणो क्षण में अपनी पर्याय का विवरण आया है अभिनंदन ग्रंथ में, उसमें ये अनुभव रसिक सब बातें ली हैं ऐसी। निर्विकल्प दशा अद्भुत है, वचनातीत है, वचन से उसको कह नहीं सकते, ऐसी है वचनातीत। સિવાય કારમણ કોથળીના નિમિત્તે પ્રગટ થતો સમસ્ત શુભાશુભ પ્રભાવ તે પૂજારૂપ અને ઉપાધિરૂપ છે, તેના પ્રત્યે કેટલીક વાર સહજપણે વિશેષ ઉદાસીનતા આવી જાય છે અને તે પ્રત્યે થાક લાગે, તે પ્રવર્તેથી અને તે પરિણતિથી થાક લાગે, ચૈતન્ય પ્રભુ એટલે પોતાનો આત્મા તેનાથી વિશેષ ઉદાસીન થઈ સ્વરૂપમાં સહજપણે વિશેષ ઠીક થાય છે, અંતરંગ સ્થિતિ આવી હોવાને કારણે કેટલીક વાર બાહ્ય સંઘ પ્રસંગ પ્રત્યે પણ ઉદાસીનતા આવી જાય છે અને બાહ્ય સંઘ પ્રસંગ ઉપાધિરૂપ અને ભોજારૂપ લાગે છે, તેમાં પણ અપ્રશસ્ત પરિચય વિશેષ કરીને અરુચિકર લાગે છે, કારણ કે તેને પોતાની આત્મસ્થિતિની સાથે મેળ નથી, પણ પ્રશસ્ત પરિચયમાં કેટલાક સંઘ પ્રસંગોમાં પ્રવર્તિરૂપ લાગવાથી તે પણ ઉપાધિરૂપ અને ભોજારૂપ લાગે છે, જે કાળે અસંગ દશાએ એકાંતવાસમાં મુનિવરો વિચરતા હશે તે કાળને ધન્ય છે। સાધકોની દશા જગતથી નિરાળી હોય છે, કોઈ કોઈ વાર સ્વરૂપમાં સહજપણે નિર્વિકલ્પણે ઠરી જાય છે અને વળી બહાર આવે છે ત્યારે પણ ભેદ જ્ઞાનની જ્ઞાતાધારાને સહજ સમાધિ પરિણમતી હોય છે, સ્વરૂપમાં લીન થાય છે, ત્યારે આત્માના અચિંત્ય અનંત ગુણ પરિણામના તરંગોને વેદે છે. સ્વરૂપમાં લીન થાય છે ત્યારે આત્માના અચિંત્ય અનંત ગુણ પરિણામના તરંગોને વેદે છે. એમ થતાં થતાં સાધક ધારા વધતા વધતા મુનિપણાની દશા પ્રગટતા મુનિપણો આવે છે. બધા પુત્રોની અંદર ચૈતન્યના નિર્વિકલ્પ દશાની જુદી જુદી રીતે વાત લીધી છે. વેદ દ્રષ્ટિએ અખંડ ગુણના પિંડ સ્વરૂપ પોતે જ આત્મા પરિણમીને પરિણમન પૂરું થાય છે એવો કોઈ અદ્ભુત સ્વભાવ છે. આ બધા પત્રો છે એની અંદર અનુભવની દશાનું વર્ણન છૂટક છૂટક રીતે અનેક જગ્યાએ આવી
આટલી નાની ઉંમરમાં આજે વાત કરે તે રીતે વાત કરેલી
વૃદ્ધ માણસ ગોળ ખાય તો ગળપણ નો સ્વાદ તો બંને ને સરખો જ આપવો જોઈએ. કોઈ વૃદ્ધ હોય કદાચ બતાવી શકે વધારે, બાળક હોય બતાવી ન શકે, પણ મીઠાઈ ખાય તો બંને ને સ્વાદ તો એક સરખો જ આવવાનો. અનુભવ કર્યો તે ઉંમરમાં સ્વાદ તો જે આવ્યો એ જ વાત કરે, જે અનુભવ થયો એ જ વાત કરે. પછી જયારે જેટલો ભાષાનો યોગ હોય એટલી વાત કરે, પણ વાત તો એ જ આવે, બીજી વાત આવે એ સીધી વાત છે. સંપૂર્ણ અડોલ પરિણતિ ને કે જ્યાં પરની અસર સૂક્ષ્મ પણ સર્વ પ્રકારે સહજ છૂટે, એકલો સાક્ષી સ્વભાવ, વિતરાગ સ્વભાવ, અચિંત્ય અને અદ્ભુત એવું આત્મદ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવ અને તરંગોને વિધી રહ્યું છે, તેમાં પરિણમી રહ્યું છે, કોઈ અદ્ભુતતામાં ખેલી રહ્યું છે. ચૈતન્ય બાગમાં પોતે ક્રીડા કરે છે એ વિષય અવારનવાર લાગી છે. यह निर्विकल्प दशा अद्भुत है, वचनातीत है. वह दशा प्रकट होने पर सारा जीवन पलट जाता है. आखिर की पंक्ति है उसमें ऐसा लिया है जैसे किसी एक जीव का भावांतर होता है, एक भाव में से दूसरे भाव में जाता है तो उसका जीवन पलट जाता है. जैसे कोई यहाँ से देव भाव में गया, यहाँ बहुत दारिद्र अवस्था हो, आर्थिक दारिद्रता हो, कपड़े नहीं हो, खाना का कोई व्यवस्था नहीं हो, बीमार शरीर में बीमारी होवे तो कोई दवाई की व्यवस्था नहीं हो, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो, और परिणाम इतने अच्छे हों कि देह छूटने से सीधा देवलोक, इतनी संपत्ति और इतनी सामग्री के बीच में उत्पन्न होता है कि जहाँ कोई कमी नहीं हुए और जहाँ कोई रोग नहीं हुए, जहाँ कोई दुख नहीं हुए, ऐसा सारा जीवन पलट गया. जैसे कि कहाँ ये अवस्था, कहाँ वो अवस्था. वैसे मिथ्यात्म अवस्था में यह जीव दीनहीन को होकर परिणमता है. मुझे तो ये दुख है, मुझे तो ये तकलीफ है, मुझे तो ये है, वो है, अनेक प्रकार की आदि वादि व्याधि उपाधि में जीव दुखी 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 होकर जीता है. मरने के बराबर जीवन है ऐसा कहते हैं ज्ञानी, भाव मरण है. फिर ये सम्यक दर्शन होने से आत्मा का आनंद और शांतिमय जीवन शुरू होने से सारा जीवन पलट जाता है. जैसे कोई नया ही अवतार हुआ हो, देह नहीं पलटता, आत्मा पलटता है. संसार में तो जीवन जब पलटता है कि देह सारा पलट जाता है, संयोग सारा पलट जाता है, तो जीवन सारा पलट जाता है. मनुष्य है वो त्रिंच हो गया या देव हो गया, त्रिंच है वो मनुष्य हो गया तो सारा जीवन पलट गया। यहाँ देवों का वही रहता है, देह नहीं बदलता है, लेकिन अनुभव होते ही सारा जीवन है वो पलट जाता है, एक नया ही अवतार हुआ ऐसा हो जाता है। परिणमन में, परिणमन में एक शांति, ज्ञान, देखने का दृष्टिकोण, श्रद्धा का विषय, ज्ञान का विषय, परिणमन का आनंद, शांति, दुख, सभी विषयों में सारा जीवन पलट जाता है, बदल जाता है जीवन, कोई नया ही जीवन शुरू होता है। इसमें आत्मा का अपने मूल स्वरूप में जैसे कोई नया अवतार होता हो, ये ईश्वर ने अवतार धारण किया आया आता है ना लोग में कि ईश्वर अवतार लेता है, ईश्वर ने अवतार लिया कि हाँ सम्यक दर्शन होते ही ईश्वर ने अवतार लिया है। वाह वाह वाह, यही बात है, दिव्य ध्वनि में सब आता है, पकड़े कोई अलग तरह से पकड़ लिया, मान्यता बना ली, जैसे भारत भूमि, भारत माता बला, भारत भूमि को क्या बोले,
भारत माता,
भारत माता, भारतीय देवी, फिर उसको कल्पना करे कोई स्त्री का चित्र दिखेगा, ये हमारी भारत माता है, झंडा रखने में वैसा होता है भूमि का, भूमि तो भूमि ही है, इसकी कोई मनुष्य नहीं होती, नहीं है कभी, लेकिन जैसे कल्पना हो जाती है वैसे दिव्य ध्वनि में आया कि सम्यक दर्शन होने से ईश्वर का एक नया अवतार हुआ, मैंने सही रूप में ईश्वर ने अपना ऐश्वर्य प्रकट करके अवतार धारण किया तो ले लिया, ऐसा ईश्वरीय अवतार लेते हैं ऐसी बात, वो जीवन पलट जाता है, सारा का सारा जो जीवन है इतना बदलता है जैसे आमूल चूल परिवर्तन हो, मूल में से कोई परिवर्तन हो, ऐसा हो जाता है अनुभव के बाद, यही कहने का अभिप्राय है। वह दशा प्रकट होने पर सारा जीवन पलट जाता है, उसका जीवन है वो सुख शांति और आनंदमय बन जाता है। इसलिए अपने गुरुदेव प्रवचन में हमेशा कहते थे कि जिसको सुखी होना हो उसके लिए यह बात है, क्या कहा, जिस जीव को सुखी होना हो इसके लिए यह बात कहते हैं, जिसको सुखी नहीं होना हो, अब दुखी होना हो इसके लिए यह बात नहीं है। यह सुख कोई दुनियादारी का सुख नहीं है, जगत के संयोग वियोग का सुख नहीं है, कि इष्ट पदार्थ के संयोग हुए अनिष्ट पदार्थ का वियोग हुए तब सुख हुए, वो बात नहीं है। उसमें कोई बिना साधन असंयोगी सुख, आत्मा से आत्मजनित आत्मिक सुख जिसको कहते हैं, आत्मिक शांति कहते हैं, ऐसा जिसको चाहिए और ऐसा जिसको जीवन चाहिए उनके लिए ये बात है। और ये भी इसकी विशिष्टता है कि एक दफे ऐसा जीवन जिस जीव का शुरू हो जाता है उस जीव को आगामी पूरा भविष्यकाल के लिए, अनंत सर्व भविष्यकाल के लिए सुखमय ही जीवन रहता है, उसको कभी फिर दुख पड़े और उसका सुख चला जावे ऐसा विनाशिक सुख प्राप्त नहीं होता, शाश्वत सुख इसमें मिलता है जो अनंत काल तक चिरकाल तक सदा ही रहता ही है, ऐसा सुख मिलता है। अब इसकी जितनी कीमत करे उतना पुरुषार्थ चले, कीमत नहीं करे तो पुरुषार्थ नहीं चले, पुरुषार्थ नहीं चले इसका मतलब कि कीमत करी
नहीं,
यही बात है। ये जो स्वानुभूति का विषय में इतनी बात किया इस पर से उसकी कीमत लेने की बात है। तो जिसको अनेक प्रकार के बाह्य परिणाम में आकुलता और दुख लगी हो और बाह्य परिणाम के दुख से छुटकर जो अंतरंग में अपने आत्मिक सुख शांति में आना चाहता हो, उसको लिए आत्मा की पहचान करके, आत्मा की शक्ति की पहचान करके, उस शक्ति को जागृत करके, उस इसका अनुभव करके अपना जीवन शांतिमय बनाना है। चार सौ चौबीस इसमें भी प्रश्न उठाया है, यहाँ से लेकर के करीब करीब सभी बोल में प्रश्न उठाया है, तो प्रश्न उत्तर ही चलता है। आत्मा के कुछ गुण अशुद्ध परिणमन करता है, बाकी के सर्वगुण शुद्ध परिणमन रूप होता है, और आत्मा के मूल स्वरूप में मैंने जो अव्यक्त शक्ति रूप प्रभाव तत्व है उसमें अशुद्धि नहीं होती है। अगर स्थूल रूप से तो ऐसा बोला जाता है कि द्रव्य गुण अशुद्ध नहीं होता, पर्याय में अशुद्धता होती है, पर्याय में भी सर्वगुण अशुद्ध नहीं होता, कुछ एक गुण जो है वो अशुद्ध परिणमन करता है। जब ऐसी बात है तो एक प्रश्न उठता है, ये प्रश्न यहाँ उठाया है, आत्मद्रव्य का बहुभाग शुद्ध रहकर मात्र थोड़े भाग में ही अशुद्धता आई है न? जब आप कहते हैं इस तरह से हमको तो ऐसा लगता है कि आत्मा के कुछ भाग में अशुद्धता ही होगी, बाकी का भाग शुद्ध रह गया होगा, कोई ऐसी बात है क्या? क्षेत्र का कोई भाग मिलता है या कैसे, ये विभाग कैसे करें हम, कहाँ शुद्धता कहाँ अशुद्धता, किस तरह समझे उसको, ऐसा एक प्रश्न उठाया है कि आत्मद्रव्य का बहुभाग तो शुद्ध रहता होगा क्योंकि द्रव्य गुण शुद्ध है, और पर्याय में भी कुछ एक पर्याय शुद्ध है कुछ एक पर्याय शुद्ध है, तो बहुत कम भाग में थोड़े भाग में अशुद्धता आई होगी, ऐसा प्रश्न है। उत्तर देते हैं कि निश्चय से अशुद्धता द्रव्य के थोड़े भाग में भी नहीं आई है, वह तो ऊपर ऊपर ही तैरती है। क्या कहते हैं, मैंने थोड़े भाग में लीले में तो थोड़ा भी बहुत हो गया, कहाँ अशुद्धता है कि ये तो बहुत ऊपर ऊपर तैरती है, पर्याय में भी ऊपर ऊपर तैरती है, आत्मा का तो भाग कहाँ ले, ये तो सवाल ही नहीं रहता। निश्चय से अशुद्धता द्रव्य के थोड़े भाग में भी नहीं आई है, द्रव्य के तो कुछ भाग में भी नहीं आई है, जो द्रव्यत्व है वो तो द्रव्यत्व है, गुणत्व है वो तो गुणत्व है, वह तो ऊपर ऊपर ही तैरती है, पर्याय में ऊपर ऊपर तैरती है। गुरुदेव दृष्टांत देते थे कुछ एक पॉइंट दिखलाने के लिए, ऐसे क्षेत्र की बात नहीं लेना, कि जैसे पानी में, पानी की बाल्टी हो उसमें तेल के टीपे पड़ जाए तो ये उसका ग्रेविटी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग है, तो क्या है कि वो पानी ऊपर तैरता है, तेल ऊपर तैरता है, पानी जो तेल का बूंद है वो बाल्टी में नीचे नहीं जाता, और साइंस का कारण है, विज्ञान का कारण है, वैसा हल्का है तेल, तो उसका बूंद है ऊपर ऊपर तैरता है, तो पानी में उसकी मिलावट भी नहीं होती, पानी और तेल कभी एक नहीं होता, उसको कितना भी मिला ले तो उसके अलग 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 बूंद हो जाएगी छोटी छोटी, लेकिन वो तेल की बूंद तेल रहेगी, पानी की बूंद पानी रहेगी, पानी तेल कभी एक होंगे नहीं, ऐसा बनेगा। तेल कहाँ है पानी में, तो ऊपर ऊपर, ऐसे आत्मा अपना चैतन्य घन है उसमें जो विभाव है वो ऊपर ऊपर, अशुद्धता है विभाव है वो अशुद्ध परिणाम है, अशुद्ध अंश है वो ऊपर ऊपर तैरता है, ऊपर ऊपर तैरता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि भाव से वो मेरे में प्रवेश नहीं कर सकते, मेरा जो भाव है चैतन्य स्वभाव भाव चित्त घन रूप भाव है उसमें उसका प्रवेश, मेरा अस्तित्व है वहां इसका अस्तित्व नहीं, मेरे से कुछ भिन्न ही भिन्न पर उपस्थितता है। मैंने बहुत कम असर है, जहां मेरी स्वभाव की असर में देखूं और विभाव की असर देखूं तो विभाव के असर तो बहुत कम है, स्वभाव के आगे
बहुत कम है,
बहुत कम है, नहीं के बराबर समझो, ऐसा कहता है। आम प्रदेश एक छे, भले ने प्रदेश एक हो, सिनेमा नो पड़दो छे, स्क्रीन पड़दाना जे प्रदेशो कपड़ाना छे सफेद ने एना ऊपर चित्रो आवे छे, प्रदेश एक छे के जुदा जुदा पण चित्रो चाल्या जाय छे, पड़दो एक प्रदेश ने अभेद मानी लियो तो ये चित्रो चाल्या जाय त्यारे पड़दो पण चाल्यो जवो जोईए, पण चित्रो चाल्या जाय छे ने पड़दो रही जाय छे। एक प्रदेश होवा छता एक प्रदेश नथी एम कही शकाय, एक प्रदेश होवा छता पण एक प्रदेश नथी। जे चित्रो आवे एमां तोड़फोड़ थाय, એમ આ ચૈતન્ય સ્વભાવ સ્થિર છે, ચૈતન્ય પણ છે એ સ્થિર છે અને વિભાવ ભાવ છે એ અસ્થિર છે, છે કે નહીં? ન દેખાય તો ધ્યાનથી જોવું, જરા ધ્યાનથી જોઈ લેવું, આત્મા સ્થિર છે કે આગો પાછો ભાગી જાય છે, અસ્થિર ભાવો ભાગી જાય છે, આત્મા ભાગી જાય છે, જાણનારો 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 જાણનારા જાણનારા રૂપે રહી જાય છે, અને બીજા ભાવ છે અસ્થિર થઈને ચાલ્યા જાય છે, એમ જ છે। એક પ્રદેશ હોવા છતાં એક પ્રદેશ નથી એમ કહેવામાં આવે છે, એમ છે। અવલોકન કરવું, ખૂબ બારીકાઈથી અવલોકન કરવું, ખૂબ ઊંડાઈથી ઊંડાણથી અવલોકન કરવું, જેટલું અવલોકન કરશો એટલું એની છે જે એની જે ચમત્કારિક જે વાતો છે એ બધી સમજમાં આવશે, અંતર અવલોકનમાં એ વિશે સમજાય છે એ વગેરે વિશે સમજાતા નથી। આ તો હજી પ્રગટ થતા પરિણામો છે, પણ એના